ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए, जनहित की रक्षा करने और अर्थव्यवस्था को दिशा देने में आरबीआई के 90 वर्षों की उल्लेखनीय भूमिका पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं आर्थिक विश्लेषक अनिल पद्मनाभन, कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं अम्बरीश सक्सेना।
आज के इस कार्यक्रम में हम चर्चा करेंगे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई के बारे में कि वो किस तरह से लोगों के हितों की रक्षा करती है और किस तरह से आरबीआई अर्थव्यवस्था को एक दिशा देती है। आरबीआई की स्थापना 90 वर्ष पूर्व हुई थी तो हम इसके 90 वर्ष मना रहे हैं, तो ऐसे में जरूरत इस बात की है कि हम अपने श्रोताओं को ये बताएं कि आरबीआई की भूमिका क्या है और किस तरह से वो लोगों के जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। इस विषय पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अनिल पद्मनाभन जी, जो कि एक आर्थिक विश्लेषक हैं। अनिल जी नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
नमस्कार आपको भी।
अनिल जी, जैसा हम सभी जानते हैं कि आरबीआई के 90 वर्ष पूरे हो रहे हैं, ब्रिटिश इंडिया में आरबीआई की स्थापना हुई थी और उसके बाद से आरबीआई एक तरह से हमारे देश की जो मौद्रिक नीति है उसको नियमित करती है और ये केंद्रीय बैंक के रूप में कार्य करती है। तो सबसे पहले मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि हमारे श्रोताओं को ये संक्षेप में बताएं कि जो रिजर्व बैंक है इसका मुख्य रूप से कार्य क्या है और लोगों के जीवन में ये किस तरह से प्रभावित करती है।
ये रिजर्व बैंक जो है, आपको हमें उन्हें समझने के लिए उदाहरण में कमर्शियल बैंक को लेना चाहिए, जो आप और हम रोजाना जाते हैं और उनसे डीलिंग करते हैं
जी।
रिजर्व बैंक एक कमर्शियल बैंक नहीं है, ये भारत सरकार की तरह एक इंस्टीट्यूशन है और ये बिल्कुल ही इंडिपेंडेंट है। इसमें थोड़ा गाइडेंस होता है, जो गवर्नर का अपॉइंटमेंट ये भारत सरकार करता है, लेकिन इनकी जो फंक्शनिंग है बिल्कुल ही इंडिपेंडेंट है। तो जब से देश आजाद हुआ, सेंट्रल बैंक का फंक्शन ये था कि जो हमारा मॉनेटरी नीति है और ये जो मॉनेटरी इकोनॉमी है जिससे हम खर्चा करते हैं, पैसे करते हैं, बैंकिंग करते हैं, ये सारा इसका देखभाल और इसका रेगुलेशन जो है ये रिजर्व बैंक के नीचे ही था। तो ज्यादातर इनका पहला काम एक तो ये मॉनेटरी एक ढांचा को मेंटेन करना था, दूसरा था जो भारत एक काफी हद तक, मतलब 5-6 दशक तक एक प्लान्ड इकोनॉमी था, तो इसमें जो रिजर्व लोकेशन होता था ये रिजर्व बैंक के थ्रू ही होता था। लेकिन जैसे ही हमारा आर्थिक ढांचा बदला, अब एक तरीके से एक प्लान्ड इकोनॉमी से एक मार्केट इकोनॉमी की तरफ बढ़ा, तो इसी संदर्भ में रिजर्व बैंक के जो ऑब्जेक्टिव और फंक्शंस थे वो भी बदले गए। तो अगर समरी में बताएं तो पहले इनका, जैसे मैंने बताया, रिसोर्स एलोकेशन में था
जी।
अब जैसे हम कहते हैं फुल सर्विस सेंट्रल बैंक, तो ये एक तरीके से हमें मॉनेटरी की मैनेजमेंट करते हैं, हमारी स्टेबिलिटी जो है बैंकिंग सेक्टर की, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को मेंटेन करते हैं, और जो भी मार्केट इकोनॉमी में जैसे यूपीआई हो, इन सब का रेगुलेशन अब रिजर्व बैंक करता है। तो एक तरीके से इनकी नीति और ऑब्जेक्टिव जो है एक मार्केट इकोनॉमी के संदर्भ में अब फंक्शन करता है, पहले की तरह नहीं। तो इनका बेसिक फंक्शन बदला है पिछले हमारे 75 सालों में
जी,
आजादी के बाद।
अनिल जी, सामान्य लोग यही समझते हैं कि जो नोट वो जो इस्तेमाल करते हैं, जो रुपया वो इस्तेमाल करते हैं प्रिंटेड फॉर्म में, उसमें रिजर्व बैंक की मोहर होती है, रिजर्व बैंक का नाम होता है। तो जो मौद्रिक नीति की बात है, जो नोट को छापने या उनको विनियमित करने की बात है, इसको स्थायित्व की, जैसे अभी आपने बात की, तो जो मौद्रिक स्थायित्व की बात है या जो वित्तीय स्थायित्व की बात है, इस काम को रिजर्व बैंक किस तरह से करती है?
भारत में नोट छापने का और नोट सर्कुलेशन में रखने का काम सिर्फ रिजर्व बैंक का है, इनका ही हक बनता है कि ये दोनों में मेंटेन करके रखे। तो जैसे कि पुराने नोटों को डिस्ट्रॉय करना, ये सारा रिजर्व बैंक के नीचे, और कोई भी मॉनेटरी ट्रांजैक्शन इस देश में रिजर्व बैंक की नीतियों के अंदर ही होता है। तो यूपीआई भी जो है इनके ओवरसाइट में है, जबकि यूपीआई नोटों का नहीं है, डिजिटल एक्सचेंज रहता है, आप और मैं फोन पे एक दूसरे को पेमेंट करते हैं, तो बैंकों के थ्रू जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन हमारा बैंक अकाउंट से, मेरे बैंक अकाउंट से आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर होता है, लेकिन फोन के मीडियम से होता है, हमें बैंक में चेक काटने की जरूरत नहीं। तो ये सारे जो ओवरसाइट है ये रिजर्व बैंक के नीचे आता है, तो कैश भी कंट्रोल करते हैं और नॉन कैश ट्रांजेक्शन भी इनके कंट्रोल में रहता है
जी।
तो इसी तरीके से वो स्टेबिलिटी इंश्योर करते हैं और ये हमारे रिटेल लेवल पर भी नहीं है, होलसेल लेवल पर है, जैसे कंपनी लेवल पे हो, बैंक टू बैंक हो, सबका है। तो इनको कहते हैं रेगुलेटर ऑफ रेगुलेटर है, ये बैंकों का रेगुलेटर है और देश का रेगुलेटर है हर मॉनेटरी ट्रांजैक्शन।
जी अनिल जी, जो हम सारे लोग सामान्य व्यक्ति जो कमर्शियल बैंक्स हैं उन्हीं के सहारे अपना सारा लेन देन करते हैं, हमें जरूरत होती है तो हम उनसे लोन लेते हैं, या हमारे पास कुछ सरप्लस पैसा होता है तो हम बैंक में जो फिक्स डिपॉजिट करते हैं, तो ये जो दरें हैं, फिक्स डिपॉजिट की दरें हैं या जो हाउसिंग लोन है या कार लोन है उनकी जो दरें हैं, इन दरों को, कमर्शियल बैंक्स की इन दरों को रिजर्व बैंक किस तरह से विनियमित करता है?
वो एक इंटरेस्ट रेट होता है जो रिजर्व बैंक जिस रेट पे खरीदता है बैंकों से और जिस रेट पे उनको सिक्योरिटीज बेचता है, इसी रेट पे डिपेंड होता है कि जो मार्केट में बोरोइंग रेट हमारा। तो जैसे आपने पूछा हाउसिंग लोन का रेट क्या होगा, हाउसिंग लोन का रेट जो होगा बैंक जब आपको देगा आपका एक रिस्क लेगा, और दूसरी बात है कि ये जो बेस रेट है इसके ऊपर प्लस होता है। तो जैसे कि अभी मेरे ख्याल से कुछ 6% के आसपास है, तो 6% प्लस होगा, तो जो भी होगा वो अपना मतलब रिस्क भी कवर करेंगे और उनका मुनाफा भी जो होगा उस पर एड होगा, तो तभी जाके करीब 10% पे बैठता है। जैसे हाउसिंग लोन ले लीजिए आप, तो ऐसे डिटरमिन होता है जो ये रेट जो आरबीआई कंट्रोल करता है बेस रेट, इसी के बेसिस पे बाकी सारे रेट कंट्रोल होते हैं। और ये रेट भी जो कंट्रोल होता है इस पर डिपेंडेंट है कि किस लेवल पे भारत सरकार जो है गवर्नमेंट बोरोइंग्स अपने बोरोइंग्स करता है, अपने जो कर्ज बनाता है, तो अगर ज्यादा कर्ज लेगा तो प्राइस बढ़ेगा, इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा, तो उसमें हमारे इंटरेस्ट रेट, रिटेल इंटरेस्ट रेट भी बढ़ेगी। तो ये दो तीन फैक्टर्स के कारण है, बट बेस रेट जो है इससे सिग्नल करता है आरबीआई पूरे देश में इंटरेस्ट रेट।
जी अनिल जी, एक और काम जो रिजर्व बैंक करता है जिसे हम कहते हैं कि जो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट है, विदेशी मुद्रा का जो विनियमन है, तो ये विदेशी मुद्रा को जो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट है इसको किस तरह से आरबीआई रेगुलेट करता है?
एक बड़े लेवल पे जो रेगुलेट करता है फॉरेन करेंसी का, उसमें यह है कि आप हमारे बैलेंस ऑफ पेमेंट्स अगर ले, जो मतलब एक्सटर्नल सेक्टर के साथ हमारे देश में जो ट्रांजैक्शन होती है दो लेवल पे होती है। एक होता है कैपिटल अकाउंट, तब हम कोई कैपिटल कॉस्ट के लिए तौर करें, कोई बाहर हम विदेश में कुछ खरीदे, कोई निवेश करे, तो वो कैपिटल अकाउंट। बट अगर आप हम ट्रांसफर करते हैं पैसे एक दूसरे को, जैसे आपके रिश्तेदार यूएस से इंडिया पैसे भेज रहे हैं आपको, वो करंट अकाउंट में, तो देश में करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन ज्यादातर फ्री है, थोड़े लेवल के कंट्रोल रहते हैं बट मोस्टली फ्री है, तो वो रेगुलेट ज्यादा नहीं होता। लेकिन कैपिटल अकाउंट पे जो है वो फ्री नहीं है, तो आप मनमानी पे कन्वर्ट नहीं कर सकते, उस पर एक लिमिट होता है हर साल पे एक इंडिविजुअल लेवल पे, कंपनी लेवल पे, और वो कंट्रोल्ड है, वो फ्री नहीं है। जैसे यूएस में फ्री है, भारत में फ्री नहीं। ये हमारा जो रिजर्व बैंक है इसी के थ्रू कंट्रोल करता है, जो सर्टेन लेवल में फ्रीडम है लेकिन कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस में ऐसी आजादी नहीं है, तो आजादी जो है लिमिटेड है एंड इसमें ज्यादा रेगुलेट नहीं करते, बैंक लेवल पे खुद ही ट्रांजैक्ट करते हैं। आप और मैं, अगर मैं विदेश में हूँ आपको मुझे ट्रांसफर करना है, तो आपके बैंक से मेरे बैंक में आएगा एंड उसमें अगर लिमिट्स के अंदर है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, करंट अकाउंट में कोई प्रॉब्लम। बट आजकल उन्होंने नया एक इंट्रोड्यूस किया टैक्स, वो एक प्रिजम्प्टिव टैक्स पे 20% का टैक्स करके अगर आप $100 बाहर भेजे तो $20 रखते हैं, बाद में रिफंड कर देते हैं एक साल के बाद, बट वो टैक्स इनकम टैक्स वाले वो पकड़ के रखते हैं $20 वो ट्रेस करने के लिए, बाकी आजाद है हम करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन।
जी अनिल जी, सामान्य तौर पर हम खबरों में पढ़ते रहते हैं कि देश का विदेशी मुद्रा भंडार इस लेवल तक पहुंच गया, इतना बढ़ गया। जब हम विदेशी मुद्रा भंडार की बात करते हैं तो उसमें कौन कौन से एसेट्स शामिल हैं?
ज्यादातर फॉरेन करेंसी होता है जो खरीदते हो, जैसे कि आप बाहर से निवेश देख लो, ये हमारे जो एफआईआई है मार्केट में निवेश करने आते, तो उदाहरण से सोचिए कि $1 बिलियन आ गए इस हफ्ते में, तो रिजर्व बैंक जो करता है जो $1 बिलियन झटके से, जैसे कि आप कोई डैम की गेट खोल दो तो एक बाढ़ टाइप स्थिति पड़ जाता है कि अचानक सरप्लस हो जाता है डॉलर मार्केट में, तो उस लेवल में रिजर्व बैंक ये डॉलर खरीदता है। उसका विपरीत होता है कि जब अचानक जो हमने निवेश किया एफआईआई ने, इन्होंने पैसे निकाले तो एक गैप पड़ जाता है मार्केट में, तो इनको एक कंट्रोल पे रखते हैं क्योंकि इस पे एक मनी सप्लाई पे इम्पैक्ट होता है, मनी सप्लाई के थ्रू इन्फ्लेशन पे इम्पैक्ट होता है, तो उस पे बाकी इकोनॉमी पे इम्पैक्ट होता है। तो इस लेवल से कंट्रोल करता है रिजर्व बैंक। हमारे जो रिजर्व है ये बढ़ते कम होते हैं, इसीलिए क्योंकि रिजर्व बैंक मार्केट में खरीदता रहता है फॉरेन करेंसी। एक ये होता है, दूसरा होता है गोल्ड। तो गोल्ड इसमें नहीं आता, गोल्ड अलग रिजर्व बैंक खरीदता है। और पिछले 2-3 सालों में हमने देखा है कि उन्होंने गोल्ड के जो रिजर्व हैं बहुत बढ़ाए हैं, बट ये ज्यादातर सारे सेंट्रल बैंक बढ़ाते हैं। कारण ये है कि जो हम कहते हैं ना हेज, मतलब बचाना, आपका पोर्टफोलियो अगर सिक्योर रखना है तो आप एक ही एसेट में नहीं रख सकते। तो फॉरेन करेंसी एक एसेट है, गोल्ड एक एसेट है, तो बॉन्ड्स एक दूसरा एसेट होता है। तो इसमें ये ऊपर नीचे करते रहते हैं ताकि भारत का जो आर्थिक स्थिति है उसको हर टाइम मजबूत रहे, खास करके उसका जो फाइनेंशियल स्ट्रक्चर है वो मजबूत।
अनिल जी, जो केंद्र सरकार है और राज्य सरकारें हैं वो एक ट्रेड सिक्योरिटीज भी जारी करती हैं। इसके अलावा जो कम अवधि के या ज्यादा अवधि के जो लिक्विड डेट प्रतिभूतियां हैं, सिक्योरिटीज हैं, वो भी जारी की जाती हैं सरकारों द्वारा। तो ये जो सिक्योरिटीज हैं इनको रेगुलेट करने के लिए रिजर्व बैंक किस तरह के कदम उठाती है?
2 साल पहले रिजर्व बैंक ने ये सुविधा रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए भी खोल दिया। तो इसका मुझे पता नहीं कितना ट्रांजैक्शन हो रहा है इस वक्त, बट आप और मैं चाहें तो कोई ऑप्शन होता है, जैसे हमारा शेयर्स खरीदते हैं वैसे हम सिक्योरिटीज खरीद सकते हैं, और ये ऑप्शन में खरीद सकते हैं या सेकेंडरी मार्केट में खरीद सकते हैं। ये सबके लिए ज्यादातर खुला है, नॉन रेजिडेंट इंडियंस के लिए भी है। और इसमें 2-3 कुछ रिक्वायरमेंट्स होते हैं जो बेसिक हैं, आइडेंटिटी KYC है और दूसरा आपका लेजिट बैंक अकाउंट होना चाहिए, बस ज्यादातर कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। तो कोई रिटेल लेवल पर भी इस पे इन्वेस्ट होता है। तो इन सबको जो ये इसका रेगुलेशन जो है इतना खुलेआम नहीं मिलता है ये सिक्योरिटी, ये भारत सरकार जो कर्ज लेता है इसके हिसाब में होता है। एंड इसको भी रिजर्व बैंक मॉनिटर करता है ताकि कर्ज ज्यादा ना बढ़े, और अगर जैसे अभी इंटरेस्ट रेट बढ़ा है तो इस वक्त जो भी सिक्योरिटीज हैं भारत सरकार के जो इश्यू हो रहे हैं हाई रेट पे इश्यू हो रहे हैं, कल को जब गिरेंगे तो रिजर्व बैंक ये जो महंगे सिक्योरिटी है वापिस ले लेगा और सस्ते इंटरेस्ट रेट वाले सिक्योरिटी इश्यू करेगा, ताकि इसमें भारत सरकार का जो कर्ज का जो बोझ है वो भी कम होता है। तो रिजर्व बैंक का आप देखेंगे बहुत लेवल पे इनका रोल है देश में, मतलब बहुत ही अहम हिस्सा है इस देश के आर्थिक फाउंडेशन।
जी अनिल जी, एक और बहुत ही महत्वपूर्ण बात जो हम सामान्य रूप से हर आदमी जिसके लिए चिंतित होता है कि जब इन्फ्लेशन बढ़ता है, मुद्रास्फीति बढ़ती है, तो ऐसी स्थिति में जब मुद्रास्फीति बढ़ रही है तो निश्चित रूप से लोगों को उससे समस्या होती है। तो इस समस्या का क्या निदान है रिजर्व बैंक के पास, कैसे रिजर्व बैंक इसको नियंत्रित करने का प्रयास करता है?
बड़ा अच्छा सवाल पूछा है आपने। ये भारत सरकार ने कुछ 5-6 साल हो गए मेरे ख्याल से एग्जैक्ट ईयर पूछ गए, तो उन्होंने RBI का जो लॉ अमेंड करके ना उनको एक फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेट 4-6% के बीच में। तो अब 6% के ऊपर जाता है तो कभी रिजर्व बैंक इंटरेस्ट रेट बढ़ाता है ताकि पैसे की कीमत बढ़ जाएगी, तो हम कम लेंगे तो मनी सप्लाई कम होगा और एक तरीके से डिमांड कम होगा तो इन्फ्लेशन पे कम होगा। इन्फ्लेशन होता क्यों, मुद्रास्फीति होता क्यों, क्योंकि ज्यादा डिमांड होता है कम सप्लाई होता है, तो इस गैप के कारण कीमत बढ़ती है। तो अगर ये गैप कम हो गया तो कीमत गिर जाएगी, राइट। तो इस तरीके से नियंत्रण में रखता है रिजर्व बैंक, और इनको एक बैंड दिया गया है। तो इस वक्त जैसे आप देख रहे हैं पिछले 1-1.5 साल से रिजर्व बैंक ने रेट बढ़ा दिए, लेकिन दिसंबर से उन्होंने उस पर एक रोक लगा दी। और अभी सब में एक्सपेक्टेशन है कि क्योंकि मुद्रास्फीति गिरी है, काफी गिरी है पिछले साल से, तो इंटरेस्ट रेट में भी कटाव आएगा, लेकिन अभी तक रिजर्व बैंक ने इसका कोई इशारा नहीं दिया, लेकिन बढ़ाया नहीं। तो इसी तरीके से नियंत्रण पा लिया उन्होंने मुद्रास्फीति पे, एंड ये इंटरेस्ट रेट के थ्रू ज्यादा करते हैं और मनी सप्लाई को भी कंट्रोल करते
हैं। अनिल जी, अब चलते हैं कार्यक्रम की समाप्ति की ओर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत ही ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी जो सामान्य तौर पर लोगों को समझ में नहीं आती आपने बड़ी ही आसान भाषा में समझा दी, जिससे निश्चित रूप से आकाशवाणी के श्रोताओं को और आम जनता को बहुत लाभ होगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
धन्यवाद।
अभी आप सुन रहे थे जनहित की रक्षा करने और अर्थव्यवस्था को दिशा देने में RBI के 90 वर्षों की उल्लेखनीय भूमिका पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे आर्थिक विश्लेषक अनिल पद्मनाभन, कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे अमरीश सक्सेना। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया।